हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 13। अब तक हम लोगों ने इस अध्याय में क्या क्या सीखा है पहले उसको देख लें कि क्या, क्योंकि इतने दिनों से हम ज्ञान के टॉपिक पे पढ़ रहे थे, भगवान ने ज्ञान के विषय में बताया था। लेकिन हमने स्टार्ट किया था, अर्जुन ने भगवान से पूछा था, पहला श्लोक, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं येयं च केशव। अर्जुन ने भगवान से 6 चीजें पूछी, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और इसके अतिरिक्त ज्ञान और ज्ञ। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या क्या बता दिया है उसको देखें। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले कहा, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। कि देखो, ये शरीर जो है वो क्षेत्र है, यानी कर्म क्षेत्र है ना, इसके अंदर आत्मा आ गई है तो ये काम करता है, इसके अंदर का इसके अंदर बैठी हुई है और कार्य ये क्षेत्र है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बैठ के करता है, ठीक है। उसके बाद इस क्षेत्र को जो जानता है, यानी कि इस शरीर के अंदर कोई ऐसा बैठा हुआ है जो इसको जानता है, और वो कौन है, आत्मा। और इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण ने एक दूसरी बात भी बताई कि असल में ये जो शरीर है ना, वो तो सिर्फ आत्मा सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानती है, लेकिन आगे बताया 3 में, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानम् मतं मम। वैसे तो यह शरीर को जो जानता है वो क्षेत्र है, लेकिन मैं हाईएस्ट क्षेत्रज्ञ हूँ। क्यों क्षेत्रज्ञ हूँ, सब क्योंकि मैं सबको जानता हूँ, सारे शरीरों में क्या क्या घटित हो रहा है, भूत भविष्य और वर्तमान क्या है, वो सब जानता हूँ। अब आप दूसरे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम, यानी कि जो क्षेत्र को जानता है, इस शरीर के विषय में सबको जानता है, और जो शरीर के जानने वाले के विषय में सबको जानता है, तज ज्ञानम मतम ममा, इसी को मेरे हिसाब से वो ज्ञान है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि ज्ञान ये है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो सब जानते हैं, तो अभी मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बताऊं, पहले मैं तुम्हें बताऊं कि क्षेत्र क्या है। और क्षेत्र के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये बहुत सारे ऋषियों ने बताया है, बहुत सारे शास्त्रों में आया है कि इस शरीर के अंदर क्या क्या है, और उसको भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे तरीके से हमें श्लोक नंबर 6 और 7 में बताया। क्या कहा, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि व्यक्त एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचसेन्द्रिय गोचर। कि देखो, इस शरीर के अंदर 24 तत्व हैं, क्या क्या हैं, 5 महाभूत, अहंकार 6, बुद्धि 7, 8 अव्यक्त यानी कि 3 गुण जिसको बोलते हैं वो 8, इंद्रियाणि दशैकं 10 इंद्रियां, कौन सी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और एकम यानी मन, पंच इंद्रिय गोचर, और 5 इंद्रियों के विषय कौन कौन से, रूप, रस, स्वाद, गंध और शब्द, ठीक है। ये हुई हमारा शरीर। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि शरीर के अंदर और क्या क्या होता है, इच्छा, द्वेष, संघात, स्थिति। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम्हें मैंने क्षेत्र के बारे में बता दिया ना, अब मैं तुम्हें क्षेत्रज्ञ के बारे में भी बता दिया कि क्या क्या है, और अब मैं तुम्हें ज्ञान के विषय में बताता हूँ। और श्लोक नंबर 8 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक हमने ज्ञान के विषय में सीखा कि भगवान ने बताया कि देखो, वास्तविक ज्ञान क्या है, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था के रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, घर बार, अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, इच्छा तथा अच्छी तथा बुरी घटनाओं के से समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव और आत्म साक्षात्कार के महत्व को स्वीकार करना तथा परम सत्य के दार्शनिक खोज के वास्तव में भगवान क्या है, आत्मा क्या है और क्या क्या हमें करना चाहिए। भगवान ने एक आखिर में हमें ये बात बताई 12 श्लोक के लास्ट लाइन में, एतज्ज्ञानमिति मा इति प्रोक्तम, प्रोक्त मतलब जो अभी तक मैंने बता दिया इस इन श्लोकों में 8 से लेकर 12 तक, एतज ज्ञान मेरे हिसाब से ये सब ज्ञान है। और अज्ञानम यद यदतो अन्यथा, इसके अतिरिक्त जो भी है वो भगवान की नजर में अज्ञान है। अब भगवान ने ज्ञान भी बता दिया, आज भगवान श्री कृष्ण नेक्स्ट टॉपिक के विषय में बता रहे हैं और वो है ज्ञेयम। ज्ञेयम का क्या मतलब है, अर्जुन ने पूछा ना, ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अब देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि भगवान ने जो श्लोक में शब्द उच्चारण किए ना, यदि हम उनको लेकर आगे चलेंगे ना तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे ज्यादातर देखो शब्दों पे हम लोग गौर नहीं करते ना जो भगवद गीता के श्लोक में लिखे हुए। अब ज्ञेय की बात हो रही है ना, तो ज्ञेय का क्या मतलब होता है, ज्ञान का लक्ष्य। कि भगवान ने जो इतना लंबा चौड़ा ज्ञान की फहरिस्त बताई हमें, जो हम काफी टाइम से पढ़ रहे थे, उसको जानने का लक्ष्य क्या है, वास्तव में क्यों जाना जाए, ज्ञान क्यों हासिल किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 13, लुक एट द भगवद गीता, हिंदी रीडर 428 और उर्दू रीडर 477। भगवान कह रहे हैं, येयम् यत्तत्र वक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिम अनादिम अत्परं ब्रह्म न सत्तं नासुदुच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञेयम् ज्ञेयम् मतलब जानने के योग्य, यत्तत् जो जानने के योग्य है, ज्ञेय जो है, प्रवक्ष्यामि अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। भगवान ने कहा देखो, अब ज्ञेय के बारे में भगवान बताना चाह रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि यानी कि मैं बता रहा हूँ। यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, यज मतलब जिसे, ज्ञात्वा मतलब जानकर, जब ये ज्ञेय के बारे में आप जानोगे तो क्या उसका रेट क्या होगा, अमृतम उष्णते यानी कि यज ज्ञात्वा अमृतम उष्णते, उससे अमृत का अश्नुते यानी आस्वादन, आपको अमृत का आस्वादन होगा। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि आप अमृतत्व का आस्वादन करना चाहते हो तो आप किए के विषय में जानो कि जानने का, ज्ञान हासिल करने का लक्ष्य क्या है। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनादि मत परम ब्रह्म, अनादि का मतलब है आदि रहित। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आदि रहित भगवान कह रहे हैं ज्ञेय को, यानी कि जो जानने के योग्य जो चीज है वो अनादि है, उसका कोई स्टार्ट नहीं है, वो उसका स्टार्ट भगवान बता ही नहीं रहे। भगवान चाहे तो बोल सकते हैं ना कि भाई उस टाइम से स्टार्ट हुए, लेकिन अनादि बोल दिया, अनादि मतलब आदि रहित, उसका कोई स्टार्ट नहीं है। मत परम मेरे आदिन है तो अनादि, लेकिन वो मेरे आदिन है। मत परम ब्रह्म, और ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नत न सत्तन्ना सदुच्यते, यानी न तत् उसको कारण, वह न असत कारण प्रभाव उच्यते कहा जाता है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, इस भौतिक जगत को कार्य कारण से परे स्थित, यानी कि भगवान कह रहे हैं, अनादि है मत परम ब्रह्म, जो आत्मा है वो मेरे आदीन है और अनादि है। न सत्तन्ना सदुच्यते, सदुच्यते का मतलब क्या है बताओ, इसमें क्या मतलब भगवान बता रहे हैं कि जो ये भौतिक जगत है ना, जो संसार है, इसके कार्यकलापों से वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय में बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो भौतिक जो जगत है उससे बिल्कुल अलग है, वो अनादि है, और उसके विषय में मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि वही ज्ञान ये है। ज्ञान का लक्ष्य क्या है, आत्मा और परमात्मा को जानना। यहाँ पर संसार में ज्ञान क्या मिलता है हमें, सिर्फ शरीर के बारे में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिस ज्ञेय के, ज्ञान के लक्ष्य के विषय में बता रहे हैं वो कुछ हटके है। तो हम प्रयास करेंगे श्री प्रभुपाद की कृपा से और भगवान के शब्दों से कि हमें ये समझ में आए कि भगवान हमें इस श्लोक में क्या समझाना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, ज्ञेय मतलब जानने योग्य चीज, ज्ञान का लक्ष्य, ठीक है, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। अब कुछ पूछ रहे थे ना कि हम लोग कैसे है ना ये सोच सकते हैं कि दुख और सुख में समान रहें और हमें कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? तो भगवान उसके बारे में बता रहे हैं कि अब जो तुम्हें बताऊंगा ना उससे तुम ब्रह्म का आस्वादन करोगे, तुम्हें उसमें अमृत का आस्वाद, अमृत का आस्वाद होगा। और यह ब्रह्म या आत्मा, जो ब्रह्म है या आत्मा है जो अनादि है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बात साफ बता रहे हैं कि अनादिम मत परम, अनादिन है लेकिन मेरे आदिन है, आदि नहीं है उसका, कोई भी स्टार्ट नहीं है लेकिन मेरे अंडर कंट्रोल में है। और आगे बताया न सत्तन नासुद सदुचित्ते, यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस भौतिक जगत के कार्य और कारण से परे है, ये भौतिक जगत में उसका कोई मेल नहीं है। वास्तव में हम परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हम आत्मा को इस भौतिक जगत के साथ मिलाना चाहते हैं, है ना। जैसे आप देखो, अब कोई एक गिलास पानी का भरा हुआ हो ना और उसमें आप थोड़ा सा तेल डाल दो और उसको आप बहुत मिलाओ बहुत मिलाओ बहुत मिलाओ, आप चाहोगे कि ये बस ये तेल जो है वो पानी के साथ घुल जाए, लेकिन क्योंकि इन दोनों की जो क्वालिटीज है ना वो एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं, इसलिए आप पहले कितनी भी मेहनत करोगे तो तेल जो है वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा और पानी के साथ डिजर्व नहीं होगा। तो इसी तरह भगवान ने भी बताया कि भौतिक जगत के कार्य और कारण से बिल्कुल परे, लेकिन हम परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम चाहते कि भौतिक जगत में रहकर आनंदित हो, लेकिन क्योंकि आनंदित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो परमात्मा के अधीन है। तो इसको भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक को श्री प्रभुपाद जी हमें बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि भी की भी व्याख्या की, यानी कि क्षेत्र के बारे में बताया जो अभी मैंने आपको बताया, और क्षेत्र के बारे में बताया और उसको जानने की विधि क्या, ज्ञान के विषय में भी बताया। अब वे ज्ञेय के विषय में बताने जा रहे हैं। ज्ञेय क्या है, यानी कि ज्ञान हासिल करने का लक्ष्य क्या है। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। पहले भगवान ने कहा था ना देखो कि जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है क्योंकि वो अपने शरीर के बारे में जानता है। फिर भगवान ने क्या कहा कि मैं ज्यादा बड़ा क्षेत्रज्ञ हूँ क्योंकि मैं सारे शरीरों के विषय में जानता हूँ। अब ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान के से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन करता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब जब तुम ज्ञाता, अब दो ज्ञाता हुए ना, ज्ञाता मतलब जानने वाले दो हुए, कौन कौन से, क्षेत्रज्ञ कौन कौन से, एक आत्मा और परमात्मा। तो भगवान बोल रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दोनों ही के ज्ञान से, यानी कि जब दोनों के विषय में हम सही तरह से जानेंगे कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का अंश हूँ, इन दोनों के विषय में जब हम जानेंगे तो मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन, फिर हम उस स्टेज पे आएंगे कि हम ये शरीर नहीं है तो शरीर से रिलेटेड किसी चीज से मुझे कैसे कोई है ना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है मेरे लिए। तो भगवान कहते हैं फिर जीवन अमृत का स्वादन होगा। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि जीव नित्य है। अब यहाँ पर ये द्वितीय अध्याय यानी सेकंड चैप्टर के, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर में कहाँ बताया गया वो मैं आपको बताऊं। सेकंड चैप्टर का श्लोक नंबर 20, श्लोक नंबर 20 है, पेज नंबर 76 फॉर उर्दू रीडर एंड पेज नंबर 70 फॉर हिंदी रीडर्स। उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं, न जायते मिर्यते वा कदाचिन्नायम् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान ने कहा आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न कभी जन्म लेती है न जन्मी है और न ही कभी जन्म लेगी, वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा कभी नहीं मरता। तो इसके बारे में भगवान श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि द्वितीय अध्याय में सेकंड चैप्टर टेक्स्ट नंबर 20 में बताया जा चुका है कि आत्मा नित्य है। इसकी भी यहाँ पर पुष्टि हुई है। क्या पुष्टि हुई, भगवान ने ये बताया ना देखो ऊपर अनादि मत परम, अनादि है वो, उसका कभी भी नित्य है, अनादि है, कभी भी उसका स्टार्ट नहीं है, क्षय नहीं है, यही बात है। अब आगे बता रहे हैं कि जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने ये बताया है अनादि है, तो इसके कभी कभी लोग बोलते हैं, मैं अक्सर ये वाला सवाल मेरा भी होता है कि देखो हमें जो शरीर मिला है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिला है, ये तो मैं मुझे पता है कि, और जब प्रलय होता है तो क्या होता है कि हम जब प्रलय होता है ना, तो जिस जिसके कर्म अभी तक बाकी रहते हैं वो कारण दक्षाई विष्णु के अंदर चले जाते हैं, और फिर वापस से जब भगवान की सृष्टि उत्पन्न होती है तो फिर जितने जितने उन्होंने कर्म किए थे उस हिसाब से उनको मनुष्य या शरीर मिलता है या पशु पक्षी जो भी शरीर मिलता है। लेकिन क्वेश्चन पता है क्या है मेरा, कि जब अभी तक किसी ने भी कोई कार्य नहीं किया था, अभी तक भगवान ने स्टार्ट में जब सृष्टि स्टार्ट की थी तब क्या हुआ था, तब क्यों किसी को है ना मनुष्य बनाया था, किसी को पक्षियों के स्टार्ट में भी मैंने यही पढ़ा था कि स्टार्ट में ही 84 लाख योनियां जो है वो बना दी गई थी। और ब्रह्मा के विषय में चलो ठीक है 84 लाख योनियां हुई थी या नहीं थी, ब्रह्मा जी बनाए गए थे ना जिन्होंने ये संसार में, तो ब्रह्मा जी के विषय में भी मैंने पढ़ा है कि जब 100 जन्मों तक कोई वर्णाश्रम धर्म को बहुत अच्छे तरीके से पालन करता है तो उसे ब्रह्मा जी बनाया जाता है, जब कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो उसे इंद्र बनाया जाता। तो मैं सोचती थी कि जब तक किसी ने भी नहीं किया था ये सब का, कोई भी ये काम किया ही नहीं था, तो स्टार्ट कैसे हुआ, भगवान ने स्टार्ट में किसी को ब्रह्मा बना दिया बस ऐसे ही बना दिया, तब तो मजा हो गया उसका, कोई कारण काम उसको करना ही नहीं पड़ा। लेकिन भगवान यहाँ पर हमें, मुझे अक्सर आंसर यही मिलता है कि हमें जो है वो जीव आत्मा को अनादि समझना चाहिए। और यहाँ पे भगवान ने भी बताया अनादि मत परम, कि अतीव वह अनादि है, उसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से भी होती है। अब ये श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये खाली यहाँ पर नहीं, वेदों में भी इसको बताया गया। अब वेदों में क्या बताया गया है, ये श्लोक जो है यहाँ पर आधा लिखा हुआ है, न जायते मिर्यते वा विपश्चिन, आधा है कठोपनिषद 1.2.18। अगर आपको ये वाला श्लोक देखना है तो आप वापस से आइए पेज नंबर 70 फॉर हिंदी रीडर एंड पेज नंबर 76 फॉर उर्दू रीडर, उसमें क्या लिखा हुआ है, कठोपनिषद 1.2.18 उसमें लिखा हुआ है, इसी तरह सा एक श्लोक है, न जायते मिर्यते वा विपश्चिन्नायम् कुतिश्चन बभूय कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ है तथा तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, ऐसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चिन्नायम्। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो भगवान का श्लोक है न जायते मिर्यते वा कदाचिन लिखा हुआ है, लेकिन इसके पास क्या लिखा हुआ है, न जायते मिर्यते वा विपश्चिन, तो विपश्चिन का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। ये जो आत्मा है वो पूरी पूरी ज्ञानमय है, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से हुई। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है न जायते मिलते, क्या वह सिर्फ आधा इसलिए बताया गया क्योंकि वेद में भी यही बताया कि ये ना कभी मरती है और ना ही कभी जन्म लेती है, तो जब जन्म लेती नहीं है तो उसका आदि कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना कि स्टार्ट कैसे हुई थी, ऐसे स्टार्ट ही थी पहले से ही, भगवान ने पहले से स्टार्ट रखी थी, क्योंकि हमें संसार में रहते तो हमें पता चलता है ये संसार क्षय होता है ना, हमें पता चलता है एक चीज खत्म हुई है, एक चीज का कोई ना कोई स्टार्ट है, लेकिन भगवान और भगवान परमात्मा और आत्मा का कोई स्टार्ट है ही नहीं, इसीलिए कहा गया न जायते मिर्यते वा विपश्चिन, ये कभी भी जन्म लेती नहीं है, इसका कोई स्टार्ट नहीं है, ये शुरू से ही है, ये अनादि है, इसका कोई स्टार्ट नहीं है, तो इसको समझने, क्योंकि हमारे पास बुद्धि इतनी नहीं है, अब जो लिखा हुआ है उसके उसके ऊपर हमें पूरा श्रद्धा है पूरी, आगे बढ़ेंगे। शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना ही मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है, ठीक है, कि जो ज्ञाता है यानी आत्मा और परमात्मा, ये दोनों ज्ञाते हुए ना, ये दोनों ये क्षेत्रज्ञ हैं, तो भगवान श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि डेफिनेटली बताने वाली बात यह है कि ये ना कभी उत्पन्न हुआ है और ना ही कभी इसका कोई स्टार्ट है और ना ही कभी मरता है, लेकिन इसके अंदर संपूर्ण ज्ञान है, ये सब कुछ जानता है। आगे बताया वैदिक साहित्य में श्वेताक्षर उपनिषद 6.13 भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में यानी कि बताया प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश, यानी कि इसको जो क्षेत्रज्ञ प्रधान क्षेत्रज्ञ, देखो क्षेत्रज्ञ को समझ वर्ड थोड़ा मुश्किल है लेकिन हमें तो पता है ना क्षेत्रज्ञ किसको बोलते हैं, जो क्षेत्र को जानता है यानी जो शरीर को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो प्रधान क्षेत्रज्ञ यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्रज्ञ कौन है, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया, किसको, परमात्मा को भगवान ने कहा कि यही यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। स्मृति वचन है। अब स्मृति में भी ये बताया गया, कुछ देखो श्रुतियां होती हैं, स्मृतियां होती हैं, उपनिषद होते हैं, तो श्री प्रभुपाद जी हमें सबका उदाहरण देते हैं क्योंकि प्रमाण चाहिए ना। अब मैं खाली बता दूं कि ये है, ये श्री प्रभुपाद खाली अपनी तरफ से बता दे तो क्यों कोई यकीन करेगा। श्री प्रभुपाद को हम मानते हैं, लेकिन ये श्रीमद् भगवद गीता खाली हमारे सनातन धर्म वालों के लिए थोड़ी है, ये तो संपूर्ण लोगों के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए, तो उसको प्रमाण देना पड़ता है कि ये शास्त्र। तो स्मृति वचन क्या है? दास भूतो हरिर एव नान्यस्यैव कदाचन। दास भूतो यानी कि जो जीव आत्मा है, ये जो भूत है ना, वो सारे क्या है? दास है। किसकी? हरेर एव। हरेर का क्या मतलब होता है? खाली कृष्ण के, हरि के हैं। एव मतलब निश्चित रूप से, खाली सिर्फ एक कृष्ण के दास है, और किसी के दास आत्मा को और किसी का दासत्व करने की जरूरत नहीं है, वो खाली भगवान का दास है। और नान्यस आगे इसी चीज को, यहाँ तक दिल नहीं भरा स्मृति का, आगे बता रहे हैं नान्यस यैव कदाचन। नान्यस मतलब और किसी का, अन्य किसी का, एव एव मतलब किसी का भी, चाहे वो भगवान का दूसरा कोई अवतार है क्यों ना हो, हरि की बात हो रही है, कृष्ण की बात हो रही है। नान्यस यैव कदाचन, किसी और का नहीं है, नहीं है, कदापि नहीं है। वो दास तो सिर्फ भगवान श्री हरि का है, ये जो आत्मा है वो केवल हरि की दास है। तो जीव आत्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, और क्योंकि आत्मा का लक्ष्य ही कृष्ण सेवा है, तो सदैव कृष्ण की सेवा करते हैं। और आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने अपने उपदेशों में की है। भगवान चैतन्य क्या कहते हैं? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है, यहाँ पर जो ब्रह्म बताया गया है ना, आप श्लोक को देखो, सेकंड लाइन स्टार्ट होती है ना, भगवान ने कहा अनादिमत परम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म वर्ड है ना उसके विषय में बता रहे हैं। ब्रह्म आत्मा है ना, ब्रह्म का मतलब तो यहाँ पर बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, आत्मा के बारे में बताया है कि ये अनादि है। और अब ब्रह्म शब्द जीव आत्मा के लिए व्यवहृत होता है, यहाँ पर जो है आत्मा, जीव आत्मा के लिए ब्रह्म को बताया गया। तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है, यानी कि ये जो ब्रह्म बताया गया है, यहाँ पर जो बताया जा रहा है अभी सिर्फ आनंद ब्रह्म नहीं है, वो कृष्ण परमात्मा की बात नहीं है, विज्ञान ब्रह्म है, यानी कि ये जो ज्ञान क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है, पहला क्षेत्रज्ञ आत्मा, उसके विषय में बता रहे हैं। आनंद ब्रह्म ही परब्रह्म भगवान है। अब आनंद ब्रह्म जो है वो परम ब्रह्म भगवान है, उसके विषय में बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पर तो सिर्फ ये बताया कि अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसे जानकर नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम आत्मा हो। तो यह ब्रह्म यानी आत्मा कभी, इसका कोई स्टार्ट नहीं है, और ये मेरे अधीन है और भौतिक जगत के कार्यकलापों से परे है। यहाँ तक समझते हैं, आगे सब साथ रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।